इशिका, अभिमन्यु और वसुधा हॉस्पिटल रूम के अंदर थे। आज तक कभी बातों में भी अभिमन्यु की मॉम का जिक्र नहीं हुआ था, लेकिन जब वसुधा को अभिमन्यु के मित्तल फैमिली के साथ काम करने की बात पता चली तो उन्होंने इशिका से अभिमन्यु की माँ का जिक्र किया। उनकी बातों से इशिका को यही लगा कि ज़रूर अभिमन्यु की मॉम मित्तल फैमिली से संबंधित है। इशिका ने वसुधा से पूछा, क्या मिस्टर राजवंश की मॉम का मित्तल फैमिली से कोई रिलेशन है? वसुधा ने गहरी सांस ली और कहा, नहीं, उसका मित्तल फैमिली से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन इस लड़के की माँ मिसेज नैना मित्तल की बहन है। इशिका को समझ नहीं आया कि जब राघव अभिमन्यु की मासी का बेटा है तो फिर उन दोनों के बीच के रिश्ते इतने खराब क्यों थे। वसुधा उसे आगे बताते हुए बोली, हमेशा से इसके दादाजी चाहते थे कि दिल्ली के चौहान फैमिली में उनके बेटे का रिश्ता हो, लेकिन उसने अपनी मर्जी से शादी की थी। बहुत कम उम्र में उसका अपनी पत्नी से तलाक हो गया था। उसका लगभग 40 की उम्र में तलाक हो गया था। तो इस लड़के के दादाजी की इच्छा के अनुसार मेरे नकाला बेटे का रिश्ता चौहान फैमिली में उनकी एक बेटी के साथ हुआ, जो उम्र में लगभग 19 साल की थी। दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप था, लेकिन ये रिश्ता एक समझौते के तहत हुआ था। वो शादी से कभी खुश नहीं थी, लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हुई तो प्रशांत की पहली पत्नी अपने बच्चे के साथ आ गई। वो उसे छुपकर पाल रही थी, जो कि अब काफ़ी बड़ा हो चुका था। वो अपना हक मांगने लगा था। सब कुछ काफ़ी कंफ्यूजिंग था, इसलिए इशिका अपने मन में सारे रिश्ते को समझने लगी। वो मन ही मन बोली, ओके, तो मिस चौहान अभिमन्यु की मॉम थी। अभिमन्यु के डैड प्रशांत राजवंश की पहली पत्नी का जो बेटा है वो नक्श के पापा मिस्टर नकुल राजवंश है। ओ, तो मिस्टर नकुल राजवंश और अभिमन्यु हाफ ब्रदर है, तभी उन दोनों के बीच में इतने डिफरेंस हैं। वसुधा ने आगे बताते हुए कहा, इस लड़के की माँ पहले ही शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था और ये एक बिजनेस डील के तहत हुई शादी थी। जब प्रशांत का बड़ा बेटा नकुल यहाँ आया तो वो और ज़्यादा गुस्से से भर गई थी। अब उसे प्रशांत को छोड़ने का मौका मिल गया था, लेकिन उस वक्त वो लगभग 7 महीने प्रेग्नेंट थी। उसने जल्दबाजी में अपनी सिजेरियन डिलीवरी करवाई और बच्चे को यहाँ पर छोड़कर प्रशांत को तलाक देकर चली गई थी। सब कुछ बताते हुए वसुधा का चेहरा उदास हो गया था। इशिका ने एक नज़र अभिमन्यु की तरफ देखा। भले ही प्रशांत राजवंश को अपनी पहली पत्नी के धोखे और बेटे के बारे में पता था या नहीं, पर उनके इस धोखे के बाद अभिमन्यु की मॉम को तलाक का पूरा हक था। आखिर ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हुई थी। इशिका ने अपने मन में कहा, वो इतनी क्रूअल कैसे हो सकती है कि उसने 7th मंथ में ही अपनी डिलीवरी करवा ली और अपने नए जन्मे बच्चे को छोड़कर चली गई थी। जब इतना इंतज़ार किया था तो 2 महीने और रुकने में क्या दिक्कत थी, तब तक शायद बच्चा फुली ग्रो हो जाता। तभी इशिका को याद आया कि एक बार वसुधा ने उसे बताया भी था कि जब अभिमन्यु पैदा हुआ था तब काफ़ी कमज़ोर था। उसे पहले डॉक्टर ने NICU में रखा था, तो बाद में उसके दादाजी ने उसका नाम चीकू रख दिया ताकि वो स्वस्थ रहे। इशिका के दिमाग में एक एक करके सारी बातें घूमने लगी थीं। कल ही अभिमन्यु ने उसे कहा था, कुछ लोग माँ बाप बनने के लिए लायक नहीं होते हैं, हमारे लिए यही अच्छा होता है कि हम उनसे अजनबियों की तरह बर्ताव करें। अब उसे अभिमन्यु की बातें समझ आ रही थी। इशिका को लगा जैसे उसके सीने में दर्द हो रहा हो। इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखा तो वो जूस के ग्लास के साथ खिड़की पर खड़ा बाहर की तरफ देख रहा था। उसका चेहरा दूसरी तरफ था, तो वो क्या महसूस कर रहा था ये उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। इशिका का मन किया कि वो जाकर अभिमन्यु को गले लगाए और उसे संभाले, लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। इशिका अपने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी वसुधा ने कहा, मिसेज मित्तल और इसकी माँ काफ़ी करीबी थी, इसी वजह से मित्तल फैमिली और राजवंश फैमिली में कभी कोई बिजनेस डील नहीं हुई और ना ही उनके रिश्ते अच्छे थे। मैं तो यही जानती हूँ कि अगर आपके साथ किसी तरह के रिश्ते अच्छे नहीं हों तो आपको बिजनेस में भी उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उनकी बात सुनकर अभिमन्यु वसुधा की तरफ पलटा और बोला, दादी, अब हम बच्चे नहीं रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो इतना समझ आ गया है कि बिजनेस में प्रॉफिट करने के लिए कई बार दुश्मनों से भी हाथ मिलाना पड़ता है। ऐसे में पर्सनल रिश्ते मायने नहीं रखते हैं। लेकिन बेटा, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, वसुधा ने परेशान चेहरे के साथ अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। अभिमन्यु ने गहरी सांस ली और बोला, चिंता मत कीजिए दादी, मैं अपने साथ तो बुरा होने नहीं दूंगा। अभिमन्यु बाहर जाने लगा। उसने इशिका को अपने पीछे आने का इशारा किया। इशिका और अभिमन्यु दोनों कियारा से मिलने के लिए जा रहे थे। इशिका और अभिमन्यु रूम के पास पहुंचे ही थे कि राघव के गार्ड ने उन्हें रोक लिया। वो बोला, मिस्टर राजवंश, विजिटर अलाउ नहीं है, क्योंकि फिलहाल मिस मित्तल की हालत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की ज़रूरत है। गार्ड के मना करने पर पृथ्वी गुस्से से बोला, तुम जानते हो ना तुम किसे मना कर रहे हो, इससे तुम्हारी नौकरी भी जा सकती है। मैं माफ़ी चाहता हूँ सर, आपकी इंसल्ट करने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन वो सच में ठीक नहीं है, गार्ड ने सिर झुकाकर कहा। पृथ्वी आगे कुछ कहता उससे पहले अभिमन्यु ने सख्त आवाज़ में कहा, चलो यहाँ से चलते हैं। अभिमन्यु, इशिका और पृथ्वी तीनों वहाँ से जाने लगे। कुछ दूर आगे पहुँचकर पृथ्वी फिर से बोला,
वो ऐसा जानबूझकर कर रहे हैं। वो चाहते ही नहीं है कि हमारे बीच के रिश्ते अच्छे हों। तुम अब ज्यादा सोच रहे हो, अभिमन्यु ने जवाब में कहा। हो सकता है उसकी बहन की तबीयत सच में ज्यादा खराब हो और वो उसके लिए प्रोटेक्टिव हो रहा हो। अभिमन्यु के कहने पर पृथ्वी शांत हो गया। अभिमन्यु को ऑफिस जाना था तो वो वहां से पृथ्वी के साथ निकल गया। तो वहीं इशिका की सच्चाई सामने आने के बाद उसने राजवंश एम्पायर में काम करना बंद कर दिया था, इसलिए वो वसुधा के कमरे की तरफ वापस जाने लगी। इशिका आगे जा ही रही थी कि तभी उसके पास एक मैसेज आया। वो कियारा के भाई का मैसेज था। उसने लिखा था, मिस सिंघानिया, मेरी बहन की तबीयत ज्यादा खराब है, क्या आप उससे मिलने के लिए आ सकती हैं? वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। इशिका पहले सोच में पड़ गई थी, फिर वो धीरे से बोली, कियारा के भाई का नाम राघव मित्तल है, वही राघव मित्तल जो अब राजवंश एम्पायर के साथ नया प्रोजेक्ट करने जा रहा है। राघव मित्तल और अभिमन्यु कजिन्स हैं। इशिका को अब उनके बीच के रिश्ते और गलतफहमियों का कारण समझ आ गया था। इशिका ने मुस्कुराते हुए जवाब में लिखा, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। इशिका कियारा के कमरे में जाने के लिए निकलने लगी। वहीं कियारा के कमरे का माहौल काफी गंभीर था। राघव को इशिका का जवाब मिल गया था तो वो आश्वस्त हो गया था। उसने देखा कि उसके मॉम डैड कियारा को डांट रहे थे। फिर उसकी नजर अपनी बहन पर पड़ी जो बिस्तर पर खुद में ही सिमटी हुई पड़ी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वो काफी कमजोर भी नजर आ रही थी। नैना ने कियारा को प्यार से डांटते हुए कहा, कियारा बेटा, जब तक तुम इलाज के लिए तैयार नहीं हो जाती तब तक ट्रीटमेंट कैसे होगा? सिर्फ सर्जरी से सब ठीक नहीं होने वाला। तुम्हें टाइम से दवाइयां लेनी होंगी, खाना खाना होगा, पर तुम हो कि किसी चीज के लिए मान ही नहीं रही। वहीं कियारा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। वो बोली, जब तक आप मुझे मिस सिंघानिया से मिलने नहीं दोगी तब तक मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे उनसे मिलना है। कियारा को इस तरह जिद करते देख राघव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां भींच ली। वो अच्छे से जानते थे कि जब तक कियारा की जिद पूरी नहीं की जाएगी तब तक वो उनकी नहीं सुनने वाली है। बचपन से ही उन्होंने बहुत लाड प्यार से उसे पाला था। यही वजह थी कि जब उसने समीर से शादी करने की जिद की थी तो वो कुछ नहीं कर पाए थे।
राघव ने अपने मन में कहा, मैं नहीं चाहता कि इसकी जिंदगी में फिर से समीर जैसा कोई लालची इंसान आए, लेकिन ये तो मान ही नहीं रही है। किया, तुम बहुत इनोसेंट हो, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग उतने ही चालाक। मैंने पूरी कोशिश की थी कि ये मिस सिंघानिया से दूर रहे, लेकिन अब इसने जिद पकड़ ली। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। राघव अपने ख्यालों में गुम था। तभी गौतम उसके पास आकर बोले, राघव, क्या तुमने मिस सिंघानिया को मैसेज किया? वो यहाँ आ रही है ना? राघव बुरी तरह मजबूर हो गया था। वो इशिका को बुलाना नहीं चाहता था, फिर भी कियारा की वजह से उसे मैसेज करना पड़ा। राघव ने अपने गुस्से को काबू करके कहा, मैंने उसे मैसेज कर दिया है। तो क्या कहा उसने? क्या वो आ रही है? नैना ने पूछा तो कियारा भी उम्मीद भरी नज़रों से उसकी तरफ देखने लगी। राघव ने आईज रोल की और कहा, वो मना क्यों करेगी मॉम? आखिर उसके इस छोटे से एहसान के बदले उसे इतना सब कुछ जो मिल रहा है, कुछ ही देर में पहुंच जाएगी। इशिका के आने की बात सुनकर गौतम और कियारा ने राहत की सांस ली, तो वहीं नैना को ये सब अच्छा नहीं लगा। नैना ने कियारा को डांटते हुए कहा, कियारा, तुम सच में बहुत जिद्दी हो गई हो। तुम्हारा भाई लोगों को पहचानने के मामले में गलत नहीं होता। अगर वो मिस सिंघानिया के बारे में कुछ कह रहा है तो तुम्हें उस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इस तरह जिद करके उसे मजबूर करना चाहिए। लेकिन मॉम, वो अच्छी इंसान है, कियारा ने धीमी आवाज में कहा। वो अच्छी इंसान होगी, पर ये मत भूलो कि वो राजवंश फैमिली से जुड़ी हुई है। अगर ये प्रोजेक्ट इतना जरूरी नहीं होता तो मैं कभी राघव को उनके साथ काम नहीं करने देती। तुम जानती हो कि उस फैमिली ने तुम्हारी मासी के साथ क्या किया है। हमें उनसे किसी तरह के कोई रिश्ते नहीं रखने हैं, खासकर अभिमन्यु के साथ, नैना गुस्से में बोली। गौतम ने नैना को समझाते हुए कहा, रिश्ते चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो जाए, लेकिन इस सच को कोई नहीं बदल सकता कि अभिमन्यु तुम्हारी मासी का बेटा है, भाई लगता है वो तुम्हारा। अगर मिस सिंघानिया यहाँ थोड़े टाइम के लिए रहने के लिए आ भी रही है तो बदले में वो हमसे काफी कुछ ले रही है। सब इशिका को गलत समझ रहे थे। ये देखकर कियारा को अच्छा नहीं लगा। वो जल्दी से बोली, लेकिन मिस सिंघानिया ऐसी नहीं है। आप उसके बारे में गलत सोच रहे हो, उन्हें गलतफहमी हो गई होगी। हो सकता है उसके मंगेतर ने ये सब डिमांड किया होगा, उसने तो बस अपने मंगेतर को भाई से मिलवाया था। कोई भले ही कुछ भी कहे, लेकिन कियारा के लिए इशिका एक मसीहा की तरह थी। जब उसका पति और साथ सबके सामने उसे बेइज्जत कर रहे थे, उसे मारना चाहते थे, तब सबके इतना भला बुरा कहने के बाद भी इशिका ने उसकी मदद की। कियारा अपने दिल की बात और कमजोरी अपने घर वालों के सामने खुलकर बता नहीं पाती थी, क्योंकि वो अपने आप को गुनहगार समझती थी। उसने उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर शादी की थी, इसलिए वो अपनी तकलीफ उन्हें चाहकर भी नहीं बता पाती थी। ऐसे में कियारा को एक दोस्त की जरूरत थी, और वो दोस्त उसे इशिका के रूप में मिला था। वो उस पर आंख बंद करके भी भरोसा कर सकती थी। अपनी बहन की मासूमियत देखकर राघव ने सख्ती से कहा, तुम आज भी इतनी ही भोली हो किया। ये बिजनेस वर्ल्ड है, यहाँ पर लोगों के छुपे हुए मंसूबे होते हैं जो उनके चेहरों से झलकते हैं। तुम्हारी मिस सिंघानिया भी कुछ ऐसी ही है। वो क्या चाहती है वो उसके चेहरे से साफ दिखाई देता है। एक चालाक लोमड़ी है वो। राघव को आयशा की शक्ल से भी चिढ़ हो गई थी। राघव की बातें सुनकर कियारा को गुस्सा आने लगा। वो चिल्लाकर बोली, बस बहुत हो गया भाई, मैं अपने लाइफ सेवियर के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकती हूँ। वो एक बहुत अच्छी इंसान है। कियारा के अग्रेसिव होने पर गौतम उसके पास आए और उसे सहलाते हुए बोले, तुम्हें ऐसी हालत में गुस्सा नहीं करना चाहिए, तुम्हारे भाई ने उसे बुला तो लिया है। उसके बाद उनमें से किसी ने कियारा को कुछ नहीं कहा। इतना गुस्सा करना उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं था। राघव का वहां रुकने का बिल्कुल मन नहीं था, इसलिए वो बोला, मुझे कोई जरूरी काम है इसलिए जाना होगा। राघव को डर था कि अगर वो थोड़ी देर और रुकता तो उसकी बहन का बर्ताव देखकर गुस्से से पागल हो जाता, इसलिए उसने जाना ही सही समझा। सबसे पहले तो अभिमन्यु राजवंश से निपटना होगा। उसे सफाई देनी होगी कि उसे कमरे में आने से क्यों मना किया गया था। मैं ही बेवकूफ था जो उसे मिलने नहीं दिया। मॉम डैड उसे पसंद नहीं करते हैं, ये बात उसे पता है। फिर क्या जरूरत थी किया से मिलने आने की, राघव ने खुद से बड़बड़ाते हुए कहा। थोड़ी देर पहले जब अभिमन्यु इशिका के साथ उसके कमरे में आया था, तब उसने जानबूझकर उन्हें अंदर नहीं आने दिया था। राघव की एक शर्त ने पूरे मामले को बदल दिया था। आयशा की इच्छा के अनुसार राघव ने अभिमन्यु से शर्त रखी थी कि जब तक इस प्रोजेक्ट में नक्श को कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन नहीं दी जाएगी, वो प्रोजेक्ट में आगे नहीं बढ़ेगा। हालांकि वो सिर्फ डिमांड कर सकता था, उसका फैसला मानना या ना मानना अभिमन्यु पर डिपेंड करता था। साथ ही वो ये बात भी जानता था कि उसकी एक शर्त से उनके प्रोजेक्ट पर क्या असर हो सकता था, पर आयशा का एहसान चुकाने के चक्कर में वो मजबूर हो गया था। राघव अपने गुस्से में बड़बड़ाता हुआ जा रहा था, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और सामने से इशिका निकली। इशिका को देखकर राघव ने खोए हुए स्वर में कहा, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे मैं इस लड़की को जानता हूँ। ओके, तो अब आपको पता चल गया होगा अभिमन्यु और राघव के बीच में क्या रिश्ता है। नकुल और अभिमन्यु हाफ ब्रदर्स हैं। अब देखते हैं राघव को इशिका का चेहरा याद आ जाता है या आयशा उसका फायदा उठाती रहेगी। अगले पार्ट पर मिलते हैं। प्लीज पढ़कर समीक्षा किया करो यार।